أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلوات بني محمد على محمد بر آپ سے درخواست کروں گا شہید سید ڈاکٹر سید علی صفدر زیدی اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک گزارش اور کروں گا کہ تھوڑا سا اگر جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آ جائیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے. آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ تھوڑا سا آگے تھوڑا تھوڑا سا یعنی ماشاء اللہ بہت شکریہ. اللہ صلی اللہ محمد محمد اتنی بولے نواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد پر. وہ تو یہ کہ مومن ماشاء اللہ پانچ دس منٹ آنے میں لے لیتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا شروع شروع میں مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوں تو گفتگو کرنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے. خیر بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. دو منٹ لیں گے تسلسل قائم کرنے کے لیے جو کل بیان کیا. دو منٹ میں اس کا خلاصہ مرجعیت معصومین کی نگاہ میں یہ عنوان ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹو دی پوائنٹ آج چلیں گے اور جیسا آپ سے وعدہ کیا ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع کریں. اس دور سے شروع کریں. اور میں تلاش کرنے نکلا تو مجھے ایک ہی جگہ سب کچھ مل گیا. استاد معظم حوضے کے حاج آغائے اصغر ناظم زادے نے 1110 اصحاب علی جن میں سے اکثریت قاطع اکثریت جو ہے وہ اصحاب رسول بھی ہے. اصحاب علی اور اصحاب رسول ہیں اکثریت. کچھ ہیں تھوڑے سے جو تابعین ہیں, باقی سب اصحاب رسول بھی وہی ہیں جو انصار اصحاب علی ہیں. تھوڑے سے اس میں تابعین ہیں یعنی جو مولا کے تو اصحاب ہیں وہ رسول کے بعد وہ آئے ہیں. تو ان کی تعداد اور یہ سب کے سب ہیں کیا فقہا. ابھی میں دلیلیں دوں گا. ان صرف فقہا کی فہرست تیار کی ہے, علماء کی یعنی شاگردوں کی فہرست تیار کی ہے. حضور کے شاگرد, مولا کائنات کے شاگرد, امام حسن کے شاگرد, امام حسین کے شاگرد, چار معصوموں کے شاگردوں کی فہرست جمع کی ہے. کتنے فقہا اور علماء کی فہرست ہے؟ 1110. پوری فہرست یہ ناچیز رکھتا ہے اپنے پاس جب آپ سے بات کر رہا ہے. 1110 1110 ہیں فقہا علماء کی تعداد ان چار معصوموں کے زمانے میں. بس ان چار معصوموں کی جو ان کے شاگرد ہیں جو مل گئے نام. اور کتنی تعداد ہوگی آگے؟ 4000 سے 5000 تعداد ہے چوتھے امام کے شاگردوں کی. اور اتنی ہی تعداد ہے معذرت پانچویں امام کے شاگردوں کی. اور اتنی ہی تعداد ہے چھٹے امام کی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, لیکن میرا جیسا آپ سے وعدہ ہے شروع وہیں سے کروں گا یعنی حضور کے دور سے شروع کریں گے. مگر ذرا سا فقیہ کی بات ہو رہی ہے, عالم کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا فقیہ کے معنی تو پتہ چل جائیں. فقیہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی نیا لفظ لے آیا کیا, کوئی کہاں سے لے آیا؟ دیکھیے لفظ کی بحث سے کئی بار کی آپ کے سامنے اور ہر بار ضرورت پڑے گی اس لفظ کی بحث کی. یعنی لفظی بحث سے مراد یہ ہے کہ جو ہم جس پر ہم زور دینا چاہ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے لفظ کا لغوی معنی, ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. لغوی معنی یعنی لغت میں جو اس کا لفظی ترجمہ ہے. مثلا کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے صلات, صلات کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے دعا. صلات کا معنی نماز نہیں. ہمارے بڑے بڑے بقرات ہیں جو کہتے ہیں نماز واجب کب ہے جناب, آپ تو صلات کا ذکر ہے, صلات کا معنی ہے دعا. کیونکہ اس کو پتہ ہی معلوم ہی نہیں, اس کے علم ہی نہیں ہے کہ لغوی بحث الگ ہوتی ہے اور اصطلاحی بحث الگ ہوتی ہے. لغت میں ایک لفظ کا الگ معنی ہوتا ہے, اصطلاح میں ایک لفظ کا الگ معنی ہوتا ہے. تو لغت میں اگر صلات ہے تو پڑھ تو صحیح قرآن مجید میں, یا قیم و صلات وات زکات, اقام صلات و اطاع زکات, قوم الا صلات, یہ جو ہے سارا قیام کا لفظ ہے, نماز قائم کر, نماز قائم کر. تو یہاں دعا کا ذرا ترجمہ تو کر کے دیکھ کہ ترجمہ ہی نہیں بنتا. दुआ कायम कर, दुआ कायम कर, दुआ की जाती है कायम थोड़ी होती है। फदूनी अस्तजीब लकुम, मुझे तुम दुआ करो, मुझे पुकारोगे तुम्हारा जवाब दूंगा। वैसा साल का इबादी अन्नी फैन्नी करीब नजीब दावत दाईजादानी, दुआ का जिक्र है कि नहीं हर जगह। सलात का जहाँ भी जिक्र आया कुरान मजीद में, किसका किसके लिए आया है? ये नमाज हया अल सलाह जब कहते हैं तो लोग दुआ नहीं करते, नमाज के लिए जाते हैं। अगर नमाज पढ़नी हो नहीं पढ़नी, घर में बैठे रहते हैं, उन्हें मालूम है मस्जिद से आवाज़ आ रही है हया अल सलाह की। हया अल सलाह का मतलब क्या समझा जाता है? दुआ की तरफ आओ या नमाज की तरफ आओ। तो ये होती है लफ्ज़ी बहस, कि जिन लोगों को नहीं मालूम वो लफ्ज़ी बहस में उलझा देंगे आपको। वो कहेंगे देखो लुगत में सलात का माना क्या है, सलात का माना तो दुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब उसने नहीं पढ़ा आपने कहाँ से पढ़ा होगा, जब उसने नहीं पढ़ा तो आपने कहाँ से पढ़ा होगा। ये बड़ा दिलचस्प एक वाक़ा हमारे साथी ने खुद हमें सुनाया, वो हैं भी ऐसे कि अपने वाक़ात खुद ही सुना देते हैं। बल्कि उस वाक़े में तो मैं भी साथ बैठा हुआ था, उनके गाड़ी में बैठा हुआ था, एक जगह उन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया। मैं खुद भी हैरान कि भाई ये कहाँ से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आखिर कर क्या रहा है। वो एक जवान आखिर आ गया गाड़ी में, उसने मुंह डाली दिया, उसने कहा मौलाना ये तो बता के जाओ ये तुमने जो पढ़ा है कहाँ से पढ़ा है। मौलाना ने कोई 15 किताबों के नाम लिए थे जो मुझे भी नहीं याद, पता नहीं कितने फला जगह, उसमें बिहार में इस बार ये बड़ी बड़ी किताबों के नाम तो मुझे याद रह गए। वो उसमें कुछ देखा कि ये तो हदीस की किताब ही नहीं है, तो लुगत की किताब है, मतलब मजमूल बहरैन, और ये कहाँ से पढ़ रहा है, मजमूल बहरैन में कहाँ से आ गया ये सब कुछ। तो जब वो चले गए तो मैंने पूछा, गाड़ी चल पड़ी, वो बेचारा परेशान होकर छटपटा के चला गया जिसने सवाल किया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या किया, ये कहा इन किताबों में कहाँ लिखा है, कहने कहते जब मैंने नहीं पढ़ी इसने कहाँ से पढ़ी होंगी। ये जवाब था उनका माशाल्लाह, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कहने लगे कि जब मैंने नहीं पढ़ी है तो यही मसला होता है कि उलझा देते हैं लोगों को, मुगालते में उलझा दिया। एक लफ्ज़ का माना लिया, देखिए लिखा नहीं किताब में, लिखा तो सलात दुआ लिखा ही, खामा खामे नमाज कहाँ वाजिब हुई, खैर तो जब कब्र में जाएगा मरेगा जब तुझे पता चलेगा नमाज कब वाजिब हुई थी, किसने वाजिब की थी। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझिए आप, एक लुगवी माना है एक इस्तिलाही माना है। शरिया, शरीयत जिसको कहते हैं शरिया, ये क्या है भाई इसका माना लुगत में, इसका माना है घाट, पानी का घाट नहीं बनाते दरिया पर जहाँ अपने पानी भी भरते भी हैं, जवा भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, घाट उसको कहते हैं, घाट कहते हैं उर्दू सीधा। उसका लफ्ज लुगवी माना शरिया का ये है घाट। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि भाई शरीयत पे अमल करो तो ऐसे माने घाट पे अमल करो, यानी वो लुगवी माना अलग है, इस्तिलाही माना वो लुगवी माना है, वो लफ्जी माना है। इस्तिलाह में जब शरीयत कहा जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा, क्या अल्लाह के अहकाम, दीन के अहकाम, शरीयत मोहम्मदी, शरीयत इलाही, उस पे अमल किया जाएगा। तो एक इस्तिलाह में आ गया कि शरीयत में ये है, शरीयत में ये है, शरीयत में ये है। समझ में आ रही बात, ये होती लफ्जी बात। ये और ये हर जबान में ऐसा होता है, सिर्फ अरबी में नहीं, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, कि लफ्ज बहुत सारे हैं जिनका एक माना लुगवी है और एक माना इस्तिलाही होता है, उसको क्या कहते हैं, इस्तिलाही माना कहा जाता है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब देखिए फिक्ह का माना, फिक्ह किन किन माना में कुरान में इस्तेमाल हुआ, दोनों माना में फिक्ह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अभी आयत पेश किए देते हैं आपके सामने, दोनों माना लुगवी माने में भी आया है, इस्तिलाही माने में भी आया है। लुगवी माना फिक्ह का क्या है, सोचना, गौर करना, फहम व फरासत से काम लेना, इसको कहते हैं फिक्ह। इसको क्या कहते हैं, फिक्ह। मसल में कहता हूँ आपको समझाता हूँ, सूरह ताहा में जनाब मूसा की दुआएं, रब्बी शराली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि ये मेरी बात समझें, माने या ना माने। यहाँ किस माने में, आम माना, लुगवी माना है, यहाँ कोई फतवे का माना नहीं है, यहाँ कोई दीन के बारे में बात नहीं, बल्कि गौर व फिक्र के बारे में बात है, कि मेरी बात समझे, मेरी बात को गौर करिए, कौली, ताकि मेरी बात समझ लें। और आइए एक और जगह आपको लेके चलें, सूरह असरा या सूरह बनी इसराइल कह लीजिए, इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कोई शय ऐसी नहीं कायनात में, आलमीन में, आसमान और जमीन में, जो अल्लाह की हमद ना कर रही हो, अल्लाह की तस्बीह ना बयान ना कर रही हो। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, उसकी हमद, उसकी तारीफ, उसकी तस्बीह बयान कर रही है। भला किल्ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, यहाँ भी फिक्ह का लफ्ज़ है ना, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। यहाँ भी फहम व फरासत, शऊर आम इंसान का। अब देखिए ना, हर शय तस्बीह कर रही है, पहाड़ की तस्बीह क्या है बताइए मुझे, नहीं समझ सकते ना। और जमादात नबातात हैवानात की तस्बीह क्या है, हर शय तस्बीह कर रही है मगर तुम समझ ही नहीं सकते। व गौर व फिक्र करोगे तो कुछ चीजों का मालूम हो जाएगा। यहां भी फिक्र क्या है, आम माने में आया, आम माने में। अब आइए एक और जगह इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के, तीसरी जगह सूरह आराफ और आयत 179 होगी, 179 जिसको कहते हैं, 179 178 भी देख लीजिएगा, बाहर थोड़ा सा आप देख लेंगे बहाने से, दो चार आय एक की जगह दो चार आयात देख लीजिएगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए देखिए किस किस माने में, वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उलाइका कलनाम बल हुम अज़ल्लु। इनके पास दिल है मगर गौर और फिक्र से काम नहीं लेते, आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, ये तो जानवरों जैसे हैं। उलाइका कलनाम बल हुमा ज़ल्लो, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा गुमराह, जानवरों से भी ज्यादा पस्त हैं, रजील हैं, ऐसे इंसान हैं। अब देखिए यहां फिक्र का माना आया, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर आया, वहां आम गौर फिक्र है, यहां दिल के गौर फिक्र की बात है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल है मगर ये सोचते समझते नहीं है, गौर फिक्र नहीं करते। अरे भाई गौर फिक्र का ताल्लुक अकल से होता है, दिल से कहां। लेकिन आइए देखिए वही लफ्जी बहस आ गई, कुरान मजीद में कहां कहां दिल को मारिफत का सरचश्मा बताया गया, एक जगह थोड़ी बताया गया। जाला लकुम समा वल अबसार वल अफिदा, हमने तुम्हें समाअत दी बसारत दी और दिल दिया सोचने समझने को, लाल लकुम तश्करून, शायद तुम अल्लाह के शुक्र करने वाले बन जाओ, शायद तुम गौर फिक्र करने वाले बन जाओ, दिल दिया दिल। याद रखिए मारिफत का आखिरी सरचश्मा, कई बार यहां भी बता चुका हूं, एक मिनट में आगे गुजर जाऊंगा, मारिफत का आखिरी सरचश्मा अक्ल नहीं है, मारिफत का आखिरी सरचश्मा क्या है, दिल है। ये दिल है जो आपसे काम रुकवाता है, ये दिल है जो आपसे काम करवाता है। अक्ल कादिर नहीं है इस बात पर, अक्ल सिर्फ बता सकती है कि अच्छा है ये बुरा, लेकिन कितने बुरे काम करने वाले अक्ल कह रही है ना बुरा है, मगर दिल कहता है करो, मानते दिल की है, दिल कहता है ना करो अच्छे काम को, अक्ल कह रही है अच्छा काम है कर ले, दिल नहीं मान रहा भाई, तो दिल की दात नहीं चलती। लिहाजा मारिफत का आखिरी सरचश्मा किसे बताया कुरान ने, वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल है इनके पास फिर भी ये गौर फिक्र नहीं करते, समझते नहीं। और आसान कर दूं, खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, मोहर अक्लों पर नहीं लगाई अल्लाह ने, मोहर का लगाई दिलों पे मोहर लगाई, यानी जब दिलों पे मोहर लग जाए, दिल सियाह हो जाए, तो वो अबू जहल हो या अबू लहब, फिर अल्लाह हिदायत नहीं करता। अक्ल है उनके पास है कि नहीं है, अक्ल है ट्रंप के पास, अक्ल है मोदी के पास, अक्ल है कि नहीं है, अक्ल थी सद्दाम के पास, और लोग बहक जाते हैं कि भाई क्या पता अल्लाह मौका देते, नहीं, मौका कब तक होता है हिदायत का, जब तक बेगुनाहों के खून से हाथ रंगीन ना हो, और जब बेगुनाहों के खून से हाथ रंगीन हो जाए फिर हिदायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, फिर अगर उसकी माफी हो जाए तो बेचारा गरीब जिन पर जुल्म हुए, वो गरीब वो मजलूम जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, जिनका कत्लेआम किया गया, जिनकी बस्तियों को बर्बाद किया गया, वो हक रखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, महबूद इसी दिन का तो इंतजार करें थे तेरी अदालत का, ये भी माफ हो गया, ये जालिम भी चला गया। लिहाजा अदल इलाही के खिलाफ है कि जिनका जुल्म इंसानों पर यहां तक पहुंच जाए, क्या करता है अल्लाह, तौफीकात को सल्ब करना। ये तौफीकात सल्ब करना क्या है, ये यही है, खत्म अल्लाह वाला कलूब ही अल्लाह इनके दिलों पे मोहर लगा देता है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात हुई वाजे, बस एक कदम आगे बढ़ गए ना, पता चल गया फिक्र का ताल्लुक क्या है। अब वो फिर वो तकरारी बातें हो जाएंगी जो मैं आप ज़हन में लाते चले जाइए, क्यों मासूमी ने फरमाया कि हमारी हुकूमत लोगों के दिलों पर है, तुम्हारी हुकूमत लोगों की गर्दनों पर है। दिल में जो चीज उतर जाए उसे दुनिया की कोई ताकत भी निकाल नहीं सकती। तो ये एक कदम आगे बढ़कर बताया कि ये मंजिल है, लेकिन आखिरी मंजिल जो कुरान ने बताई फिक्र की, वो क्या बताई, वो ये आयत जिसकी मैं बार बार तिलावत कर रहा हूँ आपके सामने, आज इसका पहला हिस्सा भी पढ़ते थे, वो मकान अल मोमिनूना लयनफिरु काफतन, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मोमिन निकल जाओ इल्मे दीन हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं है। सब चले गए तो पढ़ाओगे किसे, बताओगे किसे? पूरा मुआशरा मौलवी बन गया तो होगा क्या हशर? ये तो सोचो जरा सा कि सारे के सारे मौलवी बन गए तो होगा क्या? वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफतन, सबके सब एक खड्डा ना निकल जाओ। अब उसके बाद ये हिस्सा जो रोज तिलावत कर रहा हूँ, फलाउला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन, क्यों नहीं तुम में से निकलती, हर गिरोह में से एक जमात क्यों नहीं निकलती, सफर क्यों नहीं करती? अब यहाँ फिक्ह का माना क्या रख लेते, ये यतफक्कहु फिद्दीन, दीन की शर्त लगा दी गई कि बाकी गौर और फिक्र सब अपनी जगह होंगी, दीन का फिक्र हासिल करो, यानी फिक्र का इल्म हासिल करो, दीन में गौर और फिक्र करो, हुक्म दिया जा रहा है दीन का इल्म, यानी एक जमात वो जो एक बातिल ख्याल है उसे भी रद्द कर दिया गया कि किसी की मीरास नहीं है जी, आप खुद जाइए खुद फैसला कर लीजिए, खुद हदीस पढ़िए खुद फैसला करिए, नहीं 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 ऐसे नहीं होता। कोर कोराना तकलीद को भी मना कर दिया गया, अंधी तकलीद भी ना करना, किसी अभी मिसालें दूंगा, ऐसे ना चल पड़ना किसी के पीछे कि फलाने ने कहा था फला की तकलीद कर लो मैं कर रहा हूँ, इसकी भी ममानियत, ये भी मना है, ये भी बातिल है कि किसी की अंधी तकलीद नहीं। तकलीद के लिए भी निशानियां बताई जाएंगी, अलामात बताई जाएंगी कि किनकी करनी है किनकी नहीं करनी है, ऐसा ना हो जिनकी नहीं करनी उन्हीं की कर रहे हो, और करना तो जरूरी है, करना तो पड़ेगी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस उलूम में सबसे बड़ा इल्म कौन सा है? दीन का इल्म। फकीह इसीलिए कहता है फकीह क्योंकि कुरान ने हुक्म दिया ले यतफक्कहु फिद्दीन, दीन में तफक्कुह, दीन में फिक्र, इसमें गौर और फिक्र कर तो दीन का इल्म हासिल करेगा वो क्या कहलाएगा? उस दर्जे पर जब पहुंचेगा तो कहलाएगा फकीह। अब आइए पहले तारीफ कर दें किसकी जबानी, हम नहीं, ये तो कुरान ने बताया ना, अब तशरीह कर रहे हैं मौलाए आरिफान मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे सामईन पहुँच गए, थोड़ा थोड़ा सा ज़हमत कर लें, ज़रा सा आगे आ जाए मुझे आसानी हो जाएगी, एक सलवात भेजते हुए आ जाइए, जवान आगे आ जाइए, बहुत शुक्रिया आपका नवाज, थोड़ा थोड़ा सा सिमट आए या वो। असल में बात यह कि हमारे कुछ दोस्तों को हमारा ये जुमला पसंद बहुत है, तो इसलिए थोड़ा बिखर के बैठते हैं कि जब तक मौलाना कहेंगे नहीं हम आगे आएंगे नहीं, इसलिए मैं कह देता हूँ, जुमला बहुत अच्छा लगता है मेरा, क्योंकि दो तीन बार मौलाना कहते हैं जरा सुकून मिल जाता है। सलावत इनाय फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद। खैर चलिए बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। मौला फरमाते क्या मैं तुम्हें फकीह का पता ना बताऊं कि फकीह किसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हें हकीकी माना ना बताऊं फकीह का? अभी देखिए वहीं से बात चल रही है कुरान से और मासूमीन से बात, अभी जब दलीलें दूंगा ना दिरायत, फिर किसी शख्स में इनकार की हिम्मत ही नहीं हो सकती, ऐसी ठोस दलीलें बुरहान है, दलीलें भी नहीं बुरहान। अब मौला फरमाते क्या तुम्हें हकीकी माना ना बताऊँ फकीह का? मालूम हो गया यानी इमाम फकीह की तारीफ बता रहे हैं, क्या मैं तुम्हें हकीकी माना ना बताऊँ फकीह का कि फकीह कहते किसको? कहते फकीह वो होता है, अब देखिए कल मैंने रसूल की हदीस पढ़ी थी और उसको इसको कंपेयर कर लीजिए कि कितनी मुमासिलत है दोनों अकवाल में, मासूमीन के अकवाल में कितनी यानी तजाद तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक इमाम कुछ कहे यानी एक मासूम कुछ कहे फरमाए और दूसरा मासूम कुछ फरमाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हें हकीकी माना ना बताऊँ फकीह का? फरमाते फकीह वो होता है जो लोगों को अल्लाह की नाफरमानी पर छूट नहीं देता। समझ में आ गया पहली बात, लोगों को अल्लाह की नाफरमानी पर छूट नहीं देता। बस एक पहचान ये बता दी कि तकलीद करते वक्त ये देख लेना कि अल्लाह से डरा रहा है, सब दिलों से खौफ निकाला कुछ नहीं है, जो जाओ मर्जी करो, अल्लाह की नाफरमानी पे छूट नहीं देता, डराता है, उसका काम ही क्यों कुरान ही करे वाले युनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम। इस आलिम का काम क्या है, फकीह का काम क्या है, जब वापस पलट कर आए तो अपनी कौम को डराए डराए डराए, बोले युम जरू लाल्लहुम यहज़रून, ताकि शायद ये डरने वाले बन जाएं। तो फकीह का काम क्या है, डराना। मौला फरमाते फकीह वो नहीं होता जो लोगों को छूट दे दे फकीर, वो होता है जो नाफरमानी पर छूट ना दे। एक सिफत, फिर दूसरी सिफत बताते हैं, लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना करे, ना उम्मीद भी ना करे। क्यों? अरे खुदा के बंदे, फकीर का काम यह है कि डराना भी है, खुशखबरी भी देना। क्यों? उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस रसूल है, अंबिया का वारिस क्यों है? वही तालीमात तो देगा जो अंबिया लेकर आए थे, यानी डराएगा भी, खुशखबरी भी देगा, ये भी बताएगा कि अल्लाह ने यह भी फरमाया कि खबरदार मायूस ना होना। लेकिन तौबा करने वाले तो बनो ना, करना उम्मीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा लोगों को, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं करेगा लोगों को, ना उम्मीद नहीं करेगा। और फिर उसके बाद फिर एक सिफत, और कभी भी लोगों को अल्लाह के अजाब से मुतमईन नहीं कर देगा कि तुम पे कोई अजाब नहीं आने वाला, जाओ तुम ऐश करो, मजे करो। अजाब का लफ्ज है, लफ्ज अजाब है रिवायत में, कि फकीर वो नहीं होता जो अल्लाह के अजाब से मुतमईन कर दे कि बस जाओ मजे करो, तुम पे कोई खैर। अजाब का लफ्ज तो सुनना बहुत ही मुश्किल बात है, मोमिनीन तो माशाल्लाह सजा का लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं होते, या तो सजा की बात भी कर दो जब भी कहते हैं अजीब मौलवी है, मोमिन को काहे की सजा भाई? अच्छा मोमिन मोमिन का माल खा जाए फिर भी सजा नहीं, मोमिन मोमिन के साथ फ्रॉड कर दे फिर भी सजा नहीं, मोमिन 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 के साथ लूटमार कर ले फिर भी कोई सजा नहीं है। वो आप जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, जब भी तो कर रहा है मजे से, उसको पता है मौलवी ने ऊपर से कहा होता है जन्नत में जाएगा बेफिक्र है। तो हमारे पास भी कोई किसी की शिकायत नहीं करता, हम कहते भाई तू भी जन्नती वो भी जन्नती, जाओ फैसला कर लेना जन्नत में जाकर मैं क्या करूँ, इसे तो सारे गुनाह कर रहा है। समझ में आ गया क्या मतलब है मौला का? कैसा ना हो आलिम कि जो लोगों को मुतमईन कर दे अल्लाह के अजाब से, ना फरमानी की छूट दे दे। आप समझ में आ गया कितनी आसान सी बात की है? सुबह शाम हो रहा है ना मुआशरे में, अभी काफिले जाएंगे चलूँ के देख लिया कितने रो रहे होंगे और बॉर्डर से फूड कर रहे होंगे, हमें गालियाँ दे रहे होंगे, ले गया कोई और गालियाँ हमें दे रहे होंगे कि मौलवी कहाँ बैठे हम यहाँ फंसे हुए, हमने कहा था हमसे पूछ के क्या था भाई तू, हमें क्या मालूम किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किन शराइत में जा रहा है, वो भी वहाँ काफिले वाला छोड़ के खुद भाग जाता है, कहता है ये नंबर लो सबके मौलवियों के, इनको गालियाँ देते रहो बस, वो वहाँ से वीडियो बना बना के बैठे भाई हमसे, हमें क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ। वो जाकर ना चालाक है माल उसने समेटा, वो तो भाग गया, कह ये नंबर है भाई अब ये उनको कहानी कोई सुना देगा और वो कहानियाँ चल रही हैं। खुदा के बंदो ऐसा तो नहीं करो, ऐसा जुल्म तो ना करो कि करे कोई तुम्हारे साथ जुल्म, उसका मलबा उठा के हम पर फेंक देते हो सारा, कर कोई रहा हमें क्या पता कौन तुम्हें लेके गया, किसके साथ गए, क्यों गए हो, कहाँ गए हो, हमें क्या मालूम भाई, हमसे पूछ के गए हो, हमें बता के गए हो, क्या करके गए, नहीं जी अब हमारे लिए ये करें वो करें, सारे मौलवी यूँ ही बैठे हुए खामोश बैठे हुए, इसे तो मौलवी घरों में बैठते जा रहे हैं, जो पहले निकलते थे वो भी नहीं निकल रहे कि भाई ये तो अजीब लोग हैं, जो किया वो तो किए ही किए, जो नहीं किया वो भी हमारे सर के ऊपर डाले दे रहे हो, ऐसा नहीं करते, ये गलतियाँ नहीं कराते, ऐसा नहीं होता है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब जो बात इतनी सी थी जो मोमिनिन को लूटे उसका क्या होगा, वो भी तो मजे से लूट रहा है ना, क्यों जन्नत में तो जाना है भाई, फिर शिकायत कैसी कर रहे हो, तो शिकायत करना बता रहा है कि आदिल हकीकी भी आदिल है, मासूम भी आदिल है, इमाम भी आदिल है, अली भी आदिल है, अली का आने वाला बेटा भी आदिल है, गलत गलत है, सजा तो मिलेगी, दुनिया में अक्ल कह रही है जब खुद चाहते हो कैसा हो, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की, इसने मेरे साथ जुल्म किया, एक दूसरे पे मुकदमा करने वाले भी तो मोमिन है, अदालतों में केस लड़ने वाले भी तो मोमिन है, एक दूसरे को बंद कराने वाले भी तो मोमिन है, क्यों भाई सारे तो जन्नती हो फिर ये सब क्यों कर रहे हो, वो भी जन्नती ये भी जन्नती तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, सबको तो जन्नतें मिल चुकी यहीं पे मिंबर से बैठ के वाट दी, अब लड़ाई झगड़ा काहे का है, अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कहा गया वहुम ला यफ़क़हून, ये वो लोग हैं कि दिल तो हैं वलहुम क़ुलूबुन, इनके लिए दिल है मगर ये सोचते, लहुम क़ुलूबुन लेकिन ये सोचते नहीं है, समझते नहीं है, गौर व फिक्र नहीं करते, गौर व फिक्र करें ऐसे दूध का दूध पानी का पानी साहब अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मौला क्या फरमा रहे हैं, मौला फरमा रहे अजाब से मुतमईन नहीं कर देता, और ऐसा नहीं हो सकता फकीर कभी भी नहीं करेगा कुरान को छोड़कर ऐसी चीजों की तरफ रगबत करे, ऐसी चीजों की रगबत करे यानी कुरान को छोड़ दे दूसरी चीजों की रगबत करे और कुरान का दामन उसके हाथ से छूट जाए ऐसी रगबत करे, यानी खुद ही फैसले खुद ही फतवे बनाने शुरू कर दे खुद ही दीन बना बना के माशाल्लाह बेचना शुरू कर दे और दीन की कीमत भी रखे, 1 लाख में ये मिलेगा, 2 लाख में इतना मिलेगा, 5 लाख में इतना मिलेगा, 20 लाख में इतना मिलेगा, 30 लाख में इतना मिलेगा, ऐसे चल रहा है ना? चले नहीं चल रहा होगा। मैंने एक फर्ज कायम किया, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ, एक फर्ज समझ के इसको बस सुन लीजिएगा, समझिए फर्ज कायम किया, फर्ज करो ऐसा हो जाए तो। मैंने फर्ज कायम कर लिया, चलिए अगर फर्ज करो ऐसा हो जाए तो ये माना जाएगी बात? नहीं मानी जाएगी ना। बता दी फकीह की निशानी कि मायूस नहीं करेगा रहमत इलाही से, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा तुम्हें खुली छूट देने का, जाओ जो मर्जी करो। क्यों? इसलिए कि हर मुआशरे के लिए जरूरी है एक वजूद जो लोगों को हलाल और हराम बताता रहे। अगर हलाल और हराम बताने वाला वजूद नहीं होगा, वो बस्तियां तबाह, वो मुआशरे तबाह। अभी तो सिर्फ कचरा और मक्खियां देखिए ना, ये तो छोटी छोटी निशानियां हैं, अभी देखो बड़ी बड़ी निशानियां क्या आने वाली हैं, किस तरह से। क्यों आप कहेंगे अमेरिका में नहीं आ रही, मग़रिब में नहीं, नहीं नहीं आएगी वहां, क्यों? वहां इकट्ठा एक ही बार आना है। इम्तिहान किसका होगा? जो ईमान का दावा करेगा। तुमने ईमान का दावा किया है, अल्लाह पर यकीन का दावा किया है, वहदानियत पर ईमान का दावा किया है, इमामत पर ईमान का दावा किया है, रिसालत पर ईमान का दावा किया है, लिहाजा तुम्हें ही इम्तिहान में डालेगा। वो तो कुफार थे, तुम तो जानते थे ना कि दीन क्या है, तुम्हें नहीं मालूम था हलाल क्या है हराम क्या है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उनके साथ भी होगा बढ़ाते बात को। ये तुमने बता दिया ना कि आम माना है फिक्र का, एक खास माना, यानी फकी हर आदमी को इसलिए नहीं कहा जाता, हालांकि फिक्र का माना है गौर फिक्र करना आम माना, लेकिन फकी जब कहा जाएगा तो लोगवी माना में कहा जाएगा, यानी फकी का मतलब जो पूरे दीनी उमूर पे उबूर रखता हो। मैं तालिब इल्म हूं, कल भी मैंने ऐसा किया था, मैं फकीह नहीं हूं, फकीह फुकहा के पैरों की खाक हूं, मैं तो खुद उनके पीछे चलता हूं। तो फकीह वो होता है जो जिम्मेदार होता है मुआशरे के, मानो या ना मानो, नबी को कोई माने या ना माने नबी होता है कि नहीं होता, रसूल को कोई माने या ना माने रसूल होता है कि नहीं होता, मौला को कोई मौला माने या ना माने मौला होता है कि नहीं होता, किसी के मानने ना मानने से मौलाइयत पे फर्क नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह जिसे मौला ने अपना नाइब बनाया हो, अभी बताता हूं कैसे बनाया, किस किस को बनाया, जिसे मौला ने नाइब बनाया, तो मानो या ना मानो उसकी नियाबत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल आपसे वादा किया था कि शुरू कहां से करेंगे, पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, यही वादा था ना। अगर रसूल आलिम बना बनाकर भेज रहा है, फकीह बना बनाकर भेज रहा है, तो गौर कर लेना, पैगाम दे रहा हूं, ये पैगाम हर जगह चला जाता है मेरा, आप बेफिक्र रहिए, पहुंचाने वाले एक एक बात पहुंचाते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के पहुंचाते हैं, समझ गए आप, सब जगह पहुंच जाते हैं पैगाम मेरा। तो अगर रसूल बना के भेज दें, अली बना के भेजें, इमाम हसन मुश्तबा बना के भेजें, इमाम हुसैन बना के, और बाकी आगे के तो पता नहीं कितने नाम है सैकड़ों मेरे पास जो, लेकिन इस 8-9 मजालिस में जहाँ तक हो सकेगा रोज़ाना मिसालें दूंगा आपको, दरायत, यानी तो रिवायत पढ़ी ना, आयत रिवायत, अब आइए दरायत। पहला नाम, ऐसा नाम, अच्छा नाम भी हम ऐसे आपके सामने सारे पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको जाके आपको ढूंढने की तलाश करने की कोशिश नहीं पड़ेगी। एक शख्सियत है जिसे हम कहते हैं सलमान फारसी। क्या कहते हैं? हजरत सलमान फारसी। लेकिन याद रखिए, छठे इमाम के सामने जब किसी ने जनाब सलमान का नाम लिया था, सलमान फारसी कहा था, तो आपने कहा था सलमान फारसी ना कहा करो, सलमान मोहम्मदी कहा करो। छठे इमाम ने क्या फरमाया था जनाब सलमान फारसी के लिए? ठीक है, उर्फ आम में हमारे मुंह से भी यही निकलता है, लेकिन इमाम ने अपनाइयत के लिए कहा था कि सलमान फारसी ना कहा करो, सलमान मोहम्मद ही कहा करो। क्यों? सलमान हम अहले बैत में है, हम अहले बैत में से है। आइए, सलमान ही कौन? इनका पुराना नाम जमाने जाहिलियत का नाम है माबा, माबा नाम है, मा कबले इस्लाम का। ان کے والد کا نام زدخشاں یا زودخشاں، اب ظاہر ہے پرانے زمانے کے نام ہے تو میں نہیں لا سکتا کہاں سے تلفظ لے کر آ جاؤں صحیح، بہرحال پورا خاندان کا نام شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ شاہی خاندان سے کیا مراد ہے؟ جے جیم یہ متشدد یعنی تشدید کے ساتھ یہ جے، جیسے حج کہتے ہیں نا حج، ایسے جیش۔ یہ جے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اصفہان کے ساتھ، اصفہان کے ساتھ، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں اس جگہ کی۔ ان کے خاندان میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان آب، لیکن یاد رکھیے لکھنے والوں تو ایران کا بادشاہ لکھا ہے، لیکن میں اس کو پورے ایران کا بادشاہ نہیں اس لیے مانتا کہ ایران، وہ تو ایران تو بہت بڑا تھا نا اس زمانے میں، کہاں سے کہاں تک آدھا روس بھی ایران میں تھا، ترکی بھی ایران میں تھا، پتہ نہیں کہاں تک ایران تھا، کسرا کسرا تھا۔ اس پورے ایران پہ سلطان آب نام کا کوئی بادشاہ ملا نہیں مجھے، کیونکہ بادشاہوں کی تو پوری تاریخ ہے نا، وہ ہے نا پارس کے زمانے سے، پارس کے زمانے سے اس زمانے سے چلی آ رہی پوری ایک تاریخ بادشاہوں کی، کہ کون سا کب کون سا خاندان ان پر حاوی رہا، وہ تاریخ سب کے نام موجود، تمہیں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ملا۔ ہاں کیا مسئلہ ہے، ضرور بادشاہ لکھتے ہیں، جیسے مختلف علاقوں کا حاکم ہوتا ہے نا، اب اصفہان بھی چھوٹا نہیں تھا اس زمانے کا، اس زمانے کے اصفہان میں پورا خوزستان شامل تھا، خوزستان سے مراد کیا، یہ پورا بندر عباس تک کا علاقہ یہ اصفہان کا حصہ تھا۔ اصفہان ایک سلطنت تھی ایران کے، جیسے مختلف چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں نا، ان کو ملا کے ایران نہ تھی، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے حاکم تھے اس کے خاندان کے دھجے نام سلمان، یہ سلمان، اور ان کا نام تھا مابا، زمانے جاہلیت کا نام کیا تھا مابا۔ یہ خود فرماتے ہیں، اب یہ انہی کی زبانی میں آپ کو جو سنا رہا ہوں نا، انہی کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سلمان کی، مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا سا خشک ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کی طرح خشکی ہوتا ہے، میں کروں کیا، بولے نواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، مقام میں بتانا چاہ رہا ہوں نا اس کے لیے تھوڑا سا مقدمہ بنانا مجھے بہت ضروری ہے، بس تھوڑا سا میرا پانچ چھ منٹ ساتھ دیجیے گا، پھر جب نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپ چھائے ہوا نا یہ سب دور ہو جائے گی، سستی جو ہے آپ کی دور کر دوں گا، لیکن مقدمہ بنانا ضروری ہے تاکہ پس منظر جب تک نہیں معلوم ہوگا نا بات کا نتیجے کا مزہ نہیں آئے گا کہ سلمان ہے کون۔ مجوسی ہے، مجوسی آتش پرست، باپ کو اتنی محبت ہے، فرماتے ہیں میرے بابا اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ کیا کوئی لڑکیوں کو چھپا کے رکھے گا جیسے مجھے رکھتے تھے میرے والد گھر میں، محبت کی وجہ سے یہ باہر نہ نکلے میرا بچہ۔ لیکن مجھے شوق تھا علم کا، میں اپنے دین کے معاملے میں معلومات حاصل کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، آخر اس مقام تک پہنچا کہ اصفہان کے آتش کدے کا خادم بن گیا۔ میرا باپ بہت خوش ہوا، کیونکہ جو بھی راہبانہ زندگی گزارتا تھا، بالکل راہبانہ مجرد تجرد کی زندگی گزارتا تھا، اسے آتش کدے کا خادم بنا لیا جاتا تھا، جیسے مسیحیت میں تھا وہ روحانیت کا سلسلہ آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں، کیوں روحانی، تو کہہ رہے میرے والد بہت خوش ہوئے کہ میں آتش کدے کا خادم بن گیا، مجھے خادم بنا دیا گیا، اور میں اس میں خوش تھا کہ میں خدمت کر رہا ہوں، یعنی ایک دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا مسیحیوں کے کلیسا کے سامنے سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیسے عبادت کرتے ہیں، جب میں کلیسا میں گیا تو مجھے ان کا انداز پسند آیا، مگر مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہوا کہ ان کے پاس علم اتنا، یعنی اتنا علم تھا سلمان کے پاس کہ انہوں نے جج کر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ عیسائیوں میں علم نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس اتنا علم، سمجھ میں آ گئی کہ اگر ایک آپ کو جو کل میں نے بات کی تھی کیٹیگریز ہوتی ہے اللہ کے بندوں، کہ اگر ایک بیچارہ گاؤں دیہات کا عالم جو گاؤں دیہات کی خدمت کر رہا ہے، اسے توقع کیوں رکھتے ہو کہ وہ پورے پاکستان کے مسائل حل کر دے گا، وہ اتنا احسان مان لو کہ بچوں کو نمازیں سکھا رہا ہے، قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، کلمہ پڑھنا سکھا رہا ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے کہ نہیں معاشرے میں، سمجھ میں آ رہی ہے، کیٹیگریز ہوتی ہے نا، تو سمجھ گئے سلمان کیونکہ خود عالم ہے نا، سمجھ گیا کہ یہ ان کا علم نہیں، ایک سطح ان سے پوچھا کہ تمہارا مرکز کہاں ہے۔ جناب سلمان کو آپ معیار رکھیے گا، آپ کو ایک میزان دینے جا رہا ہوں، جناب سلمان کہتے ہیں فرماتے ہیں مرکز کہاں ہے تمہارا، تو ان کا اس وقت شام میں ہوتا تھا مرکز، کیونکہ شام قیصر و کسریٰ کی لڑائیوں میں ہمیشہ چکی بن کے پستا، چکی کی طرح دو پارٹوں میں پستا تھا، کبھی قیصر کا قبضہ ہو گیا تو یورپ میں چلا گیا، روم کے ساتھ چلا گیا، شام کسرا کا قبضہ ہو گیا تو ایران میں آ گیا، یہ تھا شام کا حال۔ تو شام مرکز تھا تمام مذاہب کا، جتنے بھی تھے بڑے بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت، مجوسی، سب کا مرکز تھا۔ तो उन्होंने बताया कि हमारा मरकज है शाम, असकफ आजम वहां बैठता है। ये जनाब रात की तारीकी में अब्बा तो जाने नहीं देते, खुद कहते हैं मैं चुपके से बिस्तर से उठ के चला गया। जैसे आप पढ़ते ना हिंदू बड़े बड़े महात्मा बुधवार की दास्तानें कहानियां, तो जनाब तलाश में जा रहे, मुतलाशी रहते थे हक के। देखो लोगों ने बाद में उनको पता नहीं क्या से क्या बना दिया, वो तौहीद परस्त थे भाई, वो हक की तलाश में निकलते थे घरों से। सलमान कहते कि मैं निकल पड़ा, शाम पहुंचा, वहां मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया, कलीसा की खिदमत शुरू की। आखिर उस पादरी का आखिरी वक्त आया, मैंने कहा भाई मैं कहां जाऊं, तू तो जा रहा है दुनिया से, मैं कहां जाऊं, मुझे अभी तक मंजिल नहीं मिली। तो उसने कहा तुझे अभी मंजिल नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों ने दीन छोड़ दिया, लोगों के पास दीन नहीं है। अब ऐसा कर तू मूसल चला जा, मूसल में मेरा फला शागिर्द है। कहते मैं मूसल आ गया, उसका आखिरी वक्त आया, मैंने कहां जाऊं मैं अब, कर नसीबैन चला जा, मैं नसीबैन चला गया, इल्म हासिल करता रहा। जब उसका आखिरी वक्त आया, मैंने कहा अब मैं कहां जाऊं, कब अब तेरी मंजिल उमूरिया होनी चाहिए। उमूरिया रोम की सल्तनत का एक शहर था। कहते मैं रूम चला गया, उमूरिया पहुंच गया, वहां जब उसको आखिरी वक्त आया तो मैंने कहा अब मैं कहां जाऊं, मुझे मंजिल नहीं मिली, पढ़ रहा हूं, मंजिल नहीं मिली, कहां जाऊं। कहा कि सुन तुझे मंजिल नहीं मिलेगी, लोगों ने दीन छोड़ दिया, दीन का साथ छोड़ दिया। हां मैं तुझे एक बात बता रहा हूं कि सरजमीन अरब में एक नबी आने वाला है, सरजमीन अरब में एक नबी आने वाला है, वो कयाम करेगा। कहां उसने यसरब का पता बताया कि दो संगलाख वादी होगी, दोनों तरफ संगलाख पहाड़ होंगे, दरमियान में बड़ा सा मैदान, एक नखलिस्तान भी होगा, हिजाज के करीब ये सरजमीन होगी, वहां वो कयाम करेगा। कहा उसकी निशानियां का हदिया कबूल करेगा, सदका कबूल नहीं करेगा, और उसके दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबूवत होगी। याद रह गया, ये बेचारा पादरी भी दुनिया से गया, इंतजार कर रहे थे कैसे जाऊं सरजमीन अरब। बनी कल्ब का कबीला, बनी कल्ब जो है इसका काफिला पहुंचा ताजरों का, जैसे ही मालूम पहुंच गए दौड़े, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे वहां जाना है तुम्हारी जमीन में। वो अपने साथ लेके चले, लेकिन बेईमानी आ गई, दिल में गुलाम बना के बेच दिया जनाबे सलमान को, गुलाम बना के बेच दिया। खुलासा कर दूं, आप इतनी खुशकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, 10 बार बिके हैं जनाबे सलमान। कितनी बार बिके? 10 बार। यहूदी के हाथ बेचा, उसे दूसरे के हाथ बेचा, उसे तीसरे के हाथ बेचा, इन्हें परवाह नहीं थी, मंजिल की तलाश थी, बस हक मिलना चाहिए। तो इतनी निशानी तो मिल गई थी। अब जिस यहूदी ने खरीदा था तीसरी बार, वो रहता था यसरब के पास, यहूदियों की आबादियां थी ना। अब इन्हें पहली बार यसरब देखा तो जो नक्शा बताया था याद आ गया, ये वही जगह है जहां नबी आकर कयाम करेगा। मगर ये यहूदी यसरब के बाहर रहता था, उसके साथ बाग में काम करते थे, गुलाम थे उसके। इस यहूदी का एक चचाजाद आया। अब सुनिए आप, तलाश कहते किसे है, यहाँ लोग थक जाते हैं किसके पास जाएं, ना इस मौलवी के पास जवाब मिला, ना उस मौलवी के पास जवाब मिला। खुदा के बंदो, हक की तलाश का रास्ता बता रहे। ये हो नहीं सकता कि कोई हक की तलाश में निकले और अल्लाह उसे हक तक ना पहुंचाए। ये यकीन रखो कि जो भी हक को तलाश करने के लिए घर से निकलेगा, अल्लाह उसको मंजिल जरूर देगा, हाँ इम्तिहान से गुजारेगा। इतना इल्म आ गया इनके पास, और गुलाम है, जिसके गुलाम है। एक दिन उसका चचाजाद आया, बनी कुरैज़ा को अल्लाह हलाक करे, ये कहता अल्लाह हलाक करे, ये काम करे थे बाग में, इन्हें गया मसला गया, चीख रहा चिल्ला रहा है। चचाजाद ने पूछा क्यों हलाक करे, क्या हो गया, क्यों अपने कबीले वालों को गालियां दे रहा है, बुरा वाला कह रहा है। कहा कि वो मक्के से एक शख्स आके कुबा में ठहरा है, वो रिसालत का दावा कर रहा है, और लाइन बनी कुरैज़ा को हलाक करे, सारे यसरब वालों को ले गए उसके पास मिलाने के लिए, तस्दीक कराने के लिए वहां ले गए। ये सारी बातें चल दो, जनाब सलमान उतर के सीधे मालिक से अपने पूछते ये क्या बात है, तुम अपना काम करो, तुम्हें से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात रह गई कि नबी को आया है कोई शख्स, तो अभी पता मालूम हो जाएगा, मेयार तो मालूम था। कुछ खजूरें लेके पहुंचे, कुबा पहुंच गए। कुबा पहुंचने के बाद अर्ज करते कि मैंने सुना है आप यहाँ तशरीफ लाए, मुसाफिर हैं, ये सदका है कुछ आपके और आपके साथियों के लिए लाया हूँ। कहते अल्लाह के, ये खुद जनाब सलमान से नकल कर रहा हूँ, उन्होंने फरमाया, खुद परवा रहे कि मैं कैसे आया इस तरफ, मैंने रख दिया, हुजूर ने अपने साथियों को दिया, मैंने देखा कि हुजूर ने तनावल नहीं फरमाया, मैं समझ गया कि एक निशानी आ गई। दूसरे दिन मैं कुछ खजूरें लेकर गया अपने हिस्से की काम की जो मुझे मिलती थी, और मैंने कहा कि हुजूर ये हदिया है, सदका नहीं है। तो मैंने देखा कि अपने साथियों को भी दी और खुद भी खा लिया। मुझे तसल्ली हो गई कि ये दूसरी निशानी पूरी हो गई, अब मोहर देखना बाकी रह गया। हुजूर भी मुस्कुरा के देखते थे जब सलमान आते थे, अपना आदमी है कहाँ तक बचेगा, इधर ही आना है ना, ऐसा नहीं है, आलिम है। लेकिन आप देखिए कि अभी अभी तक इसने ईमान की शमा दिल में रोशन हो गई, दिल में ईमान ले आया, लेकिन बता रहा है कि कोर कोराना तकलीफ नहीं जब तक पूरी तस्दीक ना हो जाए। तस्दीक करने से ना अल्लाह ने रोका, ना रसूल ने रोका, ना इमाम ने रोका, अल्लाह के बंदो, यानी इत्मीनान कल्ब। जब जनाब इब्राहिम अल्लाह के रसूल इत्मीनान कल्ब के लिए अल्लाह से बात कर सकते हैं, परवरदिगार चाहता हूं इत्मीनान कल्ब कि आंखों से देखूं, तो फिर किसने कहा कि कोर कोराना तकलीद करो? किसी ने भी नहीं कहा, हम भी नहीं कहते कोर कोराना तकलीद करो, नहीं। मैयार है तकलीद का भी, देखा जाएगा, तस्दीक की जाएगी, जो अलामात बताई गई हैं वो अलामात होंगी तो तकलीद करेंगे, नहीं होंगी तो नहीं करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, इसमें कौन सी लड़ाई झगड़े वाली बात है, अलामात हैं तो करेंगे। वो अलामात क्या है बता देते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये वाकया तो पूरा कर ले। एक निशानी रह गई, अभी ऐलान नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा, क्यों? सलमान है, आलिम है। ये मुकदमा क्यों बना रहा हूं, अभी बताता हूं कितना बड़ा आलिम है सलमान, अभी बताता हूं। आखिर जो नया नया इस्लाम आ रहा था मदीने में, अब जहां भी रसूल जाते थे पूरा हुजूम साथ होता था, साथ साथ जाते थे, तो एक दिन सलमान को मौका मिला यसरब में रसूल के पीछे पीछे चलने का, और हवा चल रही थी, हुजूर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे सलमान को। अभी माबा नाम है, सलमान नहीं हुआ, माबा नाम है, मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं। आखिर हवा चली, दोषे पैगंबर से रिदा थोड़ी सी हटी, इतनी हटी कि सलमान जिस मकसद के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे, वो मकसद पूरा हो गया। मोहरे रिसालत को देखा, दौड़ कर बोसा दिया, और जो ही हुजूर पलटे, कदमों में गिर पड़े, मैं ईमान लाया, गवाही देता हूं, तो पूरी तस्दीक, अपना इत्मीनान किया कि नहीं किया? इससे अल्लाह ने नहीं रोका, अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका, यानी अंधी तकलीद नहीं करनी। हम भी कह रहे हैं नहीं करनी, चाहे फकीह हो मुज्तहिद हो, अंधी तकलीद नहीं करनी। उसके लिए भी शर्त है कि कैसे उसकी तकलीद करनी, भी बताता हूं। लेकिन सुनिए क्या हुआ, अभी गुलामी में है, गुलामी से नहीं निकले। हुजूर ने लोगों को बता दिया सलमान का मकाम कब, खंदक में, पहला गजवा है जिसमें सलमान ने शिरकत की है, पहला गजवा, इससे पहले वाले गजवा आपने शिरकत नहीं की है। खंदक में सब मशवरे दे रहे हैं, 15,000 का लश्कर है, कैसे लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने बड़े लश्कर से कैसे लड़ा जाएगा। सबकी हालत जो है बता चुका हूँ, गजवा थे पैगंबर जब अशरा पढ़ा था उसमें पढ़ चुका हूँ। खुलासा ये कि जनाब सलमान ने फरमाया अल्लाह के रसूल मशवरा दे सकता हूँ? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा क्यों नहीं दे सकते, ये सारे मशवरा दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? रोका अल्लाह के रसूल ने? नहीं रोका ना, अल्लाह के बंदो, इतनी सी बात है। मैं कह रहा हूँ ना कि अंधी तकलीद कहाँ है, यानी अगर किसी में कोई सलाहियत है तो मासूम क्या चाहता है कि इसकी सलाहियत को उभारा जाए, इसको सामने लाया जाए, इसकी शख्सियत को बनाया जाए। ऐसा नहीं कि शख्सियतों को चलो खबरदार मेरे सामने बोलना नहीं कुछ, मैं तुम्हारा मुतलकुल अनान आलिम हूं या फकीह हूं या सियासी लीडर हूं या सियासी रहनुमा, मुतलकुल अनान, बस मेरे सामने बोलना नहीं है, सवाल नहीं करना, काट के उल्लू बने बैठे रहो, बुजे अखमश बन के बैठे रहो, जो मैं कह रहा हूं ढाई ढाई घंटे का कह रहा हूं तुम सुनते चले जाओ बस मेरी बात, वो चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी, कोई भी हो, कोई तय नहीं लगा रहा मैं, कोई भी हो, किसी की अंधी तकलीद नहीं करनी। अल्लाह का भी यही हुक्म है, रसूल का भी हुक्म है, जब तक इत्मीनान कल्ब ना हो। यही पैगंबरों ने दर्श दिया, यही अंबिया ने दर्श दिया, यही इमामों ने दर्श दिया। हुर को जबरदस्ती लाए हुसैन, जानते कि मेरा सिपाही है, लेकिन मौके पे मौका दे रहे हैं, खुद आएगा तस्दीक करेगा फिर आएगा, तस्दीक करेगा फिर आएगा। मशवरा दे सकता हूं, क्यों नहीं दे सकते मशवरा, बताइए सलमान क्या है आपके दिल में। हमारे यहां ऐसा होता है, जब बहुत बड़ा कोई लश्कर हो तो हम अपने शहर के गिर्द खंदक खोद लेते, इतनी चौड़ी खंदक के घोड़ा पार ना कर सके। और जनाब ये बात पूरा हुआ और चौड़ी जितनी चौड़ी बनाई थी, निगरानी कर रहे हैं सलमान फारसी, सुपरवाइजर ये है, और इन्हें खंदक बनवाई। अब जब ये इतना बड़ा मार्का सर हो गया, अब सुनिए, तो अभी तक अजम थे, अजम क्या थे, फारसी, तीन गढ़ होते ना, एक अंसार, एक मुहाजिर, एक बेचारा अकेला सलमान, इनमें अजम अजम अजमी अजमी फारसी कहलाते थे। लेकिन जब ये काम हुआ तो अंसार और मुहाजिर ने मिलकर कहा, सलमान और मिन अराब है ना, ये हम में से है, ये अरब है, ये हमारा है। अंसार ने कहा हमारा है, मुहाजिरीन ने कहा हमारा है। जब रसूल ने नारा सुना तो दोनों को जवाब दिया, सलमान और मिन्ना अहलल बैत। ये उनके जवाब में अल्लाह के रसूल ने कहा था, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए, पसमंजर मालूम हो गया सलमान का, और हुजूर ने आजाद कराया था गुलामी से कि जाओ सौदा करो, क्या मांगता है तुम्हारा मालिक। आए कह हुजूर मेरे पास तो है नहीं जो वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है? उसने कहा 300 पौधे लगाने होंगे दरख्त के, वो खजूर के, खजूर के पौधे लगाने होंगे 300, वो लगाओ, और 40 वकिया सोना। अब ये एक वकिया के मुख्तलिफ बताया गया, कहीं एक तोला है, कहीं आधा तोला है, कहीं 2 माशे 6 माशे जो भी है, 40 वकिया एक वजन है, वकिया एक वजन है जैसे और होते हैं वजन, ऐसे एक औजार में से एक है, हमें ज़रूरत नहीं कि उसको याद कर लें, ज़रूरी है इतना सोना दे दें और ये सब। तो हुज़ूर ने जवाब किया साहब कि कौन कौन अपने भाई की मदद करेगा, लो जी पौधे लगाने वाले भी आ गए वहाँ पे, सोना देने वाले भी गए, 40 वकिया देने, जनाब सलमान आज़ाद हो गए, जनाब सलमान आज़ाद हो गए। अब सुनिए, क्योंकि हर जगह अल्लाह का रसूल सलमान को अहमियत देता था, गैर मासूम है, मासूम तो नहीं है ना सलमान, इमाम भी नहीं है, रसूल भी नहीं है, नबी भी नहीं है, मौला अली से कोई मुकायसा नहीं है सलमान का, ये ज़हन में रहे आपके, सलमान आम जैसे लोग हैं उनमें से एक है सलमान। तो एक साहब बहुत नाराज़ हो गए थे, उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि एक अजमी को आप हम अरबों पर फौकियत देते हैं, तो ग़ज़बनाक हो गए अल्लाह का रसूल, पहली बार वहाँ ये जुमला कहा, खुतबा हज में तो, हज्जतुल विदा में तो बाद में कहा है, पहले सलमान के लिए कहा था, खबरदार अभी तक तुम उसी जिहालत में पड़े हुए हो, आदम की औलाद होने के नाते से, इंसान होने के नाते से किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं, किसी अरब को अजम पर कोई फौकियत नहीं, सलमान तो हम में से है। अब सुनिए सलमान की तारीफ क्या कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, जिसके लिए मैंने सारा पसमंजर बताया है वो सुनिए, फरमाते हैं सुनो सलमान इल्म का वो बहरे बेकरा है, बहरे बेकरा यानी जिसका कोई किनारा ही इल्म का, बहरे बेकरा और गंजीने ना तमाम, ऐसा खजाना है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सलमान के लिए फरमा रहे हैं कि इतना बड़ा आलिम है कि एक ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा नहीं, जिसकी कोई तह नहीं, यह है बहरे बेकरा गंजीने ना तमाम, खत्म ना होने वाला खजाना है। और उसके बाद यह भी बात खत्म नहीं की कि ये वो चश्मा है मीठे और ठंडे पानी का, जिससे इल्म के सोते फूटते हैं और दलीलें और बुरहान आके इस पे खत्म हो जाती हैं। ये इल्म की तारीफ करें, किसकी इल्म की, के सलमान में इतना इल्म है। अब 100 साल उम्र रही हो या इससे ज्यादा, मैं उम्र के झकड़े में नहीं पड़ता कभी भी, किसी ने 90 साल बताए, किसी ने 80, किसी ने 100, किसी ने 180 और पता नहीं क्या 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 क्या, मैं झगड़े में पड़ती नहीं, मैं सीधी सीधी बात करूँ, जितने भी थे पूरी जिंदगी खर्च की इल्म हासिल करने में, आखिरी उम्र में पहुंचे तह तक कि मामला क्या है, हक क्या है, आखिर पहुंचे ना, दलीलों के जरिए पहुंचे, अक्ल के जरिए पहुंचे, फिर जाके इस्लाम कबूल किया। और उनके इल्म की तारीफ कौन कर रहा है, अल्लाह का, अल्लाह का रसूल, कैसे सीखा, ये ऐसा समंदर इल्म का, तुम्हें सब बातें बताएगा, दूसरे मज़हब की भी बताएगा, क्यों रसूल नहीं बता सकते। तकलीद करने वालों, हम मासूम की तकलीद में है, हम तो मौला की तकलीद में है, मौला नहीं है तो मनाए सारे करेक्टर। अच्छा अब भी कह सकते हैं, अब भी कह सकते हैं सलमान फारसी में बेहतरा। अब मैं 2 नाम और लेता हूँ, अब देखो कौन एतराज करेगा, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब सुनो, हाँ इसमें भी कोई ना कोई मीन में निकाल लेंगे, मुझे मालूम है आजकल जनाब सलमान के भी पीछे पड़े हुए, अक्ल नहीं है, फहम नहीं है, पढ़ा है नहीं, पढ़ते हैं ही नहीं और चैंपियन बनते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि जनाब सलमान के बारे में एक ऐसा ग्रोह, ऐसा तबका पैदा हो गया है कि जो पता नहीं कहाँ की उल्टी सीधी हाँकना शुरू हो गया है। कि नहीं जी उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा किया, नहीं ये हमारे लिए काबिल भरोसा काबिल एतबार नहीं। तुम्हारा इल्म की वसत क्या, तुम जानते क्या हो रसूल और अली और अहले बैत के इन जान इशारों के बारे में जो अपनी इतनी इतनी दो इंच की ज़बान दो दो गज़ की करके खोल देते हो। सुनो ये तो जनाब सलमान है, इनका मैंने थोड़ा सा पढ़ा, कभी मौका मिला इंशाल्लाह पढ़ चुका हूँ किसी और शहर में, खमसा जनाब सलमान पर खमसा भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने इतने रखा क्यों आगे बताना चाह रहा हूँ, ये घड़ी जो है ना बहुत तेज़ चल रही है, इसको थोड़ा ठीक कराएं कल। खैर अब आइए दूसरा नाम, अब रसूल ने बराह रास्त जो मुबल्लिग बना के भेजे, पहला मुबल्लिग, मुबल्लिग आलिम भी है खतीब भी है, आलिम भी है खतीब भी, कहाँ भेजा, पहला पहला काफिला जो हिजरत कर रहा है हबशा की तरफ, किसे सरदार बनाया, किसे सरबराह बनाया कि जहां भी ऐसे बात हो दीन की बात हो जाफर गुफ्तगू करेगा बाकी खामोश रहना। तो जाफर को तैयार करके भेजा है ना, कौन जाफर तैयार, मौला के बड़े भाई अबू तालिब के बेटे, तो जो पहला काफिला भेजा उसने मुबल्लिग साथ भेजा, कौन जाफर तैयार, जाफर इब्ने अबू तालिब, समझा दिया सबको कि अगर ऐसा कोई मौका है गुफ्तगू का सब खामोश है ना, मेरा भाई जाफर बात करेगा। और जाफर कितना बड़ा आलिम है, जब मक्के से वफद पहुंचा इब्ने आस वलीद इब्ने अतबा ये सब लेने के लिए नजाशी के पास कि हमारी कौम के बागी तेरे पास आए इनको वापस दे, बड़े बड़े कीमती तोहफे भी लेके गए थे, वजीरों को भी मिला लिया, मुशीरों को भी मिला लिया, और चालें भी तैयार कर ली कि दरबार में चाल कौन सी चलनी है, सवाल कौन सा करना है। जब दरबार में पहुंचे ये सब, सबके सब सजदे में चले गए, जो मक्के से आए थे वो भी सजदे में चले गए नजाशी के सामने, उन्हें भी आदत थी ना बुतों के सामने सजदा करने की, तो भी चले गए। लेकिन फिर देखा कि जाफर खड़े हैं, जाफर ने अपने साथियों को मना कर दिया, कोई सजदे में नहीं जाएगा, कोई सजदे में नहीं जाएगा, खड़े रहो सब। हैरान हो गए, खुश हो गए मक्के वाले, हो गया काम हमारा, अब वैसे ही इनकी गर्दनें मार दी जाएंगी, बादशाह के सामने झुके नहीं सजदा नहीं किया। लेकिन बादशाह समझ गया कि इतनी सी तादाद में होने के बावजूद, मजबूर होने के बावजूद, मेरे मुल्क में होने के बावजूद जिन लोगों में इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने झुके नहीं, कुछ तो इनके पीछे होगा, कुछ तो इनके पीछे होगा, जभी तो इतना शेर बन के खड़े हुए हैं। तो आज भी अगर कोई इतनी बड़ी ताकतों के सामने डटा हुआ हो तो समझ लेना पीछे कुछ है। सलाम भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ में आ गई बात। अब जनाब उन्होंने मुकदमा पेश करते 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 ये भी बता दिया कि ये जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते भाई, और ये तस्लीस के भी कायल नहीं है, ये अपने जैसा इंसान मानते ईसा को, ये इतना बड़ा जुर्म था अपने जैसा मान लेना, कयामत आज भी ऐसे ही है। अगर बशर कह दिया तो कयामत आ जाएगी, बशर कैसे कह दिया तुम, और कुरान बार बार कह रहा है कि जब कोई नबी आता था तो लोग पहला इल्ज़ाम यही लगाते थे, ये कैसा नबी है भाई माशाल्लाह, ये कैसा रसूल है माशाल्लाह, कुरान क्या है ये कैसा, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह चलता फिरता है, हमारे जैसा उठता बैठता, वह कोई मलक होता, यानी इतने पस्त थे, इतने पस्त थे, इंसानियत को इतना पस्त कर दिया था कि ये गुमान करते थे कि इंसान तो बहुत पस्त है, या तो कोई मलक आना चाहिए, कोई और शक्ल में आना चाहिए, ये कहाँ से आ गए। इसीलिए हर एक को खुदा मान लेते थे, बंदर को मान लिया, हाथी को मान लिया, गाय को मान लिया, सांप को मान लिया, बिच्छू को मान लिया, ऐसे ऐसे भी मैंने देखे कि चूहे को भी देवता मान बैठे। हाँ चूहों को देख के आया हूँ मैं, चूहों का मंदिर देख के आया हूँ, चूहों के देवता है, यानी कितने पस्त हैं कि अपने आप को चूहे बिल्ली से भी कम। ये वही असफल साफरीन, अल्लाह ने आसन तकवीम पे खल्क किया, सुम्मा रददना हो असफल साफरीन, जब अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदों को छोड़ोगे या समझने में मुश्किल करोगे तो फिर यही होगा, जाहिल तुम्हारे रहनुमा बन जाएंगे जाहिल। लिहाजा ये भी बता दिया कि अपने जैसा मानते हैं बशर, और खुदा के बंदो बशर बशर में फर्क होता है। एक बार बताओ अल्लाह के सिवा कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं उनमें सबसे अफजल कौन है, अशरफुल मखलूकात है कौन अल्लाह के बंदो, ये तो बता दो। ये हजरत इंसान जो तुम और मैं बैठे हैं, लेकिन फर्क है फर्क, जैसे अब्द का एक बार आपको फर्क बताया था कि अब्द की एक मंजिल हम जैसे गुनाहगार हैं रूदियत में, अब्द की आखिरी मंजिल क्या है, सुभान अल्लाह यसरा, व्यापते हैं, वो जो मेराज व्याप गया वो एक मंजिल है, एक मंजिल वो अदना है, इसी तरह बशर की मंजिलें हैं, एक है खैरुल बशर। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए यार, अब मैं आपको यार माशाल्लाह सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए का पूछो इनसे, पूरी अपनी तकरीर जब कर चुका, वहां से आने वाला दरबारी खतीब, दरबारी दरबारी खतीब माल लेकर आया था ना, सब ने इनाम इकराम देकर भेजा था, अपना नुमाइंदा बना के भेजा, जा भाई ये काम तुझे करके आना है, ये काम तुझे करो, अपने पूरा पूरा हक अदा कर रहा था। मैंने कहा ना कितने वाला दीन चाहिए उतने वाला देगा, 2 लाख वाला चाहिए कि 25 लाख वाला चाहिए, जितने पैसे दोगे उतना दीन तुम्हें दे देगा, उतने वाला उतने वाला। समझ में आ गई बात? अब जहाँ इतनी सुनते हैं एक दो इस पे भी सुन लेंगे, हमें क्या हरज है, अल्लाह की राह में अल्लाह के रास्ते में हक बात करने पे बहुत कुछ सुना है और भी सुन लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। वो हमारा तो एक ही सुन है, आप जानते हैं हमेशा एक जुमला कहते हैं, लोग झूठ बोलने से नहीं डरते, मैं सच बोलने से क्यों डरूं जी, लोग झूठ बोलने से नहीं डरते, मैं सच बोलने से किस लिए डर जाऊं, लोग गढ़ी हुई रिवायतें बयान करें, मैं पढ़ी हुई भी ना बयान करूं। खुदा के बंदों को खुदा का खौफ कर लो, कुछ रहम कर लो दीन पे, हमारे अकीदे पे रहम करो, ढटाई के साथ झूठ बोले जा रहा, और ये भी नहीं सोचते हो कि दुनिया तमाशा बना रही है, बच्चों की मुश्किल हो गई, स्कूल कॉलेज में लोगों की मुश्किल हो गई, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, अंट छंट जो मुंह में आ रही है बके जा रहा है बके जा रहा है बके जा रहा है, कहीं रुकी नहीं रही जबान, और फिर ढटाई के साथ बोलूंगा मैं तो, बोलूंगा मैं तो, दुनिया तमाशा बना रही है, दीन का तमाशा बनवा रहा है बैठ के जाहिलों के दरमियान, और खुश हो रहे हैं जाहिल नीचे बैठे जाहिल खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, क्यों कह रही नहीं मजा आ रहा है, मजे मजे में दीन का बेड़ा गर्क हो रहा है, तुम्हारे मजे में तुम्हारे एंटरटेनमेंट में दीन का काम तमाम हो रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब जाफर तैयार ने गुफ्तगू शुरू की, अल्लाह की तौहीद बयान की, रसूल का मुकाम, वक्त कम है, मुख्तसर सा आखिर में क्या कहा, अब जब सब ने पूछा ईसा के बारे में बोलो, क्योंकि लोगों का अकीदा था कि ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं, तसलीस है अल्लाह ईसा मरियम ये एक ही है, तीन मिलके अल्लाह बनता है, और ईसा अल्लाह के बेटे। खुदा के बंदो आज अगर कोई ऐसा हो कि किसी को अल्लाह माने और फिर अल्लाह के बेटों का भी कायल हो, अगर कहीं ऐसा हो जाए तो डरे 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 इस वक्त से डरे, कुछ जगहों पे ऐसा हो चुका है, यहां भी ये वबा फेंकने की कोशिश की जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है, लेकिन अभी तक आप क्योंकि कराची का मजमा थोड़ा सा समझदार है पढ़ा लिखा है, इसलिए लोगों को मुश्किलात पेश जरूर आ रही है पढ़े लिखों के मुकाबले सामने, वरना दूसरे को भी जो हाल हो चुका है वो मैं जानता हूँ। अल्लाह मानते हैं, अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, अल्लाह की अम्मा मानते हैं, अल्लाह का अब्बा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पूछा कौन है जनाब जाफर ने, साफ साफ कोई कतैया नहीं किया, अब तक बैठे बैठे छुप के ठीक है, लेकिन अब जब बात सामने आ गई उन्होंने फंसा दिया था ना, कैसा सवाल करो मौलवी से कि सच बोलेगा तभी फंसा, झूठ बोलेगा तो पहले ही फंसा है ना, ऐसा सवाल बना के दो, तेरा मेरा ये बताइए फलां के बारे में, फलां चीज के बारे में आपकी क्या राय है, तो होंगे जो डर जाते होंगे, हम लोग क्यों डरे भाई, हमें क्या क्या डर है, हमें तो कोई खौफ नहीं है। तो ये किसने सिखाया, पहला खतीब पहला आलिम जो अल्लाह के रसूल ने भेजा, और किसी ने नहीं भेजा, अल्लाह के रसूल ने भेजा, मुबल्लिग बनाकर भेजा दीन का, अपनी खिताबत का जौहर भी दिखाना और इल्म का जौहर भी दिखाना, ऐसा ना हो खिताबत ही खिताबत तो इल्म हो ही नहीं, ऐसा ना हो वरना तबाही और बर्बादी है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहुत सारे नारे हो गए माशाल्लाह, आज तो बहुत ज्यादा ही हो गए कुछ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब मुश्किल ये है कि देखिए यहां भी एक मुश्किल है, कदम कदम पर मुश्किलात है, क्या खुदा ना करे खुदा ना करे नारे के बारे में मैंने एक लफ्ज कह दिया तो फिर भी बैठे हुए ताक में लोग, हाँ पकड़ा गया, अरे मैं खुद सुन के आ रहा हूँ कानों से, नारे से रोक दिया, نعرے سے روک دیا, مولوی مقصر ہے اور تیرا خاندان ہے مقصر. سمجھا؟ ہم لوگ جانتے ہیں, مولا کو بھی جانتے ہیں اور مولایت کو بھی جانتے ہیں. جس حد تک جاننے کا حق ہے اتنا بھی نہیں جانتے جتنا تو جانتا ہے. تو اتنا جانتا ہے جتنا جاننا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ علی کو کسی نے نہیں جانا سوائے میرے اور اللہ کے. سمجھ میں آ گئے؟ وہ اتنے ہی جانتے ہیں جتنا جاننا چاہیے, اسے زیادہ تو جانتا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو جا فیصلہ یاد کھڑے ہو گئے ساری دلیلیں دینے کے بعد, کمریم کے بارے میں کیا کہتے ہو, عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو, یہ سوال انہیں دیا تھا, یہ پوچھو نا, یہ پوچھو. اب پھنس گئے, اب خوش ہو رہے گا, اب بولیں گے یہ جعفر اب پھنسے, گردن اڑی. بادشاہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا, اور یہ کچھ اور کہیں گے. پہلے جناب مریم کے بارے میں آیات پڑھی, اللہ نے ان کو پاک اور طاہر بنایا, اپنے زمانے کی عورتوں کا سردار بنایا, طاہر و مطاہر بنایا. سوری جناب, آیت پڑھنے کے بعد پھر جناب عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ بس یہی عقیدہ ہے جتنا قرآن میں آیا, انی عبداللہ واتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے. اب خوش ہو گیا مکے سے آنے والا, قبر کی گردنیں اڑی. نجاشی نے سنا یہ, دربار پہ سناٹا چھا گیا, عیسائی علماء نصاری علماء انتظار میں کہ اب حکم دے, اور ہم جلادوں کو حکم دے کہ اس کی گردن اڑاؤ, ان سب کی گردن اڑاؤ. یہ کیا کہا انہیں کہ انی عبداللہ واتانی الکتاب, کے عیسائی عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, کتاب دی اللہ کا بندہ ہے, بندہ تازہ عیسائی. بس نجاشی چند لمحے خاموش رہا, دیکھتا رہا ان سب کے چہرے. جو جعفر کے ساتھ تھے وہ بھی تیار ہو گئے شہادت کے لیے. ظاہر ہے ذرا سا خوف تو آیا, لیکن کوئی بات نہیں, اپنے عقیدے کو چھپایا تو نہیں. یہ تو نہیں کہ سرحد کے پار ایک اور عقیدہ, سرحد کے ادھر ایک اور عقیدہ. میں نے لوگوں کے دو دو عقیدے بھی دیکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی سرحد کے ادھر جاؤ تو عقیدہ وہاں جیسا, سرحد کے ادھر آؤ تو عقیدہ یہاں جیسا. خدا کی قسم کسی موقع پہ زبان لڑکھڑائی نہیں ہے. ہمارے بھی چاہنے والے دنیا بھر میں بہت ہیں, ہر جگہ ہیں, ہر ملک میں, لیکن ہم نے موزی کو موزی کہتے ہوئے کبھی تقیہ نہیں کیا. موزی کو ظالم درندہ کہتے ہوئے ہمیں کبھی خوف نہیں آیا کہ وہاں پہ ہمارے چاہنے والے کیا کہیں گے. ہم نے کبھی بھارت کو سامراج کہتے ہوئے اپنی زبان کو کبھی بھی روکا نہیں. سامراج ہے وہ, سامراج ہے. مظلوم چاہے آسام کا ہو, مظلوم چاہے کشمیر کا ہو, یمن کا ہو, فلسطین کا ہو, پاکستان کا ہو, مظلوم ہے. اور مجھے یہ کہنے کا حق ویسے بھی ہے کہ کوئی وہاں سے بیٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ جناب آپ کیا بھی تو یہ ہوتا ہے, آپ کیا ہوتا ہے, ایسے دو چار وہاں بھی پیدا ہو گئے نا ادھر ہندوستان میں, شاعری بھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 الٹی سیدھی بکواس بھی کر رہے ہیں, مودی کی حمایت میں بولے جا رہے ہیں. بھاجپا کی آر ایس ایس کی حمایت کرنے والے جو ظلم کی حمایت کرتا ہے وہ بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے, یاد رکھنا. ہم سے کہتے ہو تو سنو ہمارا جواب. ہم نے سب کچھ یہاں پر ہوا, خدا کی قسم یہاں کے یزید کو بھی یزید کہا, یہاں کے ظالم کو ظالم کہا. اتنی ہمت تو پیدا کرو کہ وہاں کے موزی کو موزی کہہ سکو. ہم نے کب کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہوا, لیکن ہم نے حمایت کی. کیا ہم نے کسی ظالم کی حمایت کی؟ ہم نے عامروں کو ان کے دور حکومت کے عامر کہا, آج بھی ظالم ہے تو ظالم کہا. اگر جنرل ضیاء کی حکومت تھی تو جنرل کے دور میں اس کو عامر کہا, ظالم کہا, قاتل کہا, زندانوں میں گئے, کوڑے کھائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حسینی کسی یزیدی کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا. زندہ آباد, زندہ آباد, یزیدیت زندہ آباد, یزیدیت زندہ آباد, یزیدیت زندہ آباد. ہائے ہماری دست دار, کربلا کربلا, ہائے ہماری دست دار, کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا. سنیں میری بات, سمجھ آ گئی بات, ریکارڈ ہو گئی بات, چلی جائے گی سب جگہ. ہم نے کبھی تقیہ نہیں کیا, लेकिन उसी मुल्क में हम उनको भी जानते हैं जो हक की खातिर आज भी जुल्म और सितम सह रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो वहां के, चाहे वो मसीही हो। हमने उन उलमा को भी देखा वहां पे, उन लोगों को भी देखा जो आज भी मोदी की हुकूमत में मोदी की मुखालिफत कर रहे हैं। तो जो उसकी हिमायत कर रहे हैं ना मौलवी, हमारे हो या दूसरे हो, हमें इसकी परवाह नहीं होती भाई। हम कुछ नहीं देखते इस मामले में, हक और बातिल के मार्के में कुछ नहीं देखते हम। हम ये देखते हैं कि कौन मजलूम का हामी है, कौन जालिम का हामी है। जो जालिम का हामी है मेरे घर का फर्द हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम का हामी हो कहीं का भी हो, हम उसके साथ हैं, और मजलूम भी कहीं का हो हम उसके साथ। तो हमसे बात करने से पहले अपने गरीबानों में झांको, हम पर टॉन्ट करने से पहले, हम पे तंज करने से पहले कि आपके यहाँ ये हुआ, पूरी पूरी नज़में लिख रहे हैं आपके यहाँ इतना कत्ल हुआ, ये हुआ, तो हुआ तो हमने यजीद को यजीद कहा, तुम भी तो कहो ना अपने यजीद को यजीद, तुम भी तो अपने मूसी को मूसी कहा, तुम भी तो उन दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा, उनसे खौफजदा रहने वालों, हमने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, गली गली में मुकाबला किया है, तुम दहशतगर्दों के सामने सर झुकाए हुए, आरएसएस के दहशतगर्दों के सामने, उनके खुंडों के सामने तुम सर नहीं क्यों हो, हम सर बुलंद हैं। हमने तालिबान दाइश किसी के सामने सर नहीं झुकाया, ना उनके सरपरस्तों के सामने सर झुकाया। हम पर आवाजें कसने से पहले अपने गरीबानों में झांको, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये कुछ आई थी मेरे पास, कुछ क्लिप वहां से आई थी, जिसमें बड़ा तंज किया गया था कि अपने मुल्क को तो देखो वहां क्या क्या होता है। तो जहां भी होता है ना, हम उसको जुल्म भी कहते हैं, हम किसी से दबते नहीं, ना यहां दबते ना कहीं और दबते। इसीलिए अल्लाह ने हमको सुरखुर रखा हुआ, इसीलिए जहां भी तुम्हारे अभी जो हक का मुतलाशी है ना, वो हमारी आवाज पे लब्बैक कहता है। जानता हूं मैं उन लोगों को पूरे भारत में जो हमारी आवाज सुनते हैं, आमन्ना और सद्दकना भी कहते हैं और लब्बैक भी कहते हैं। क्यों? उनके दिलों में हक की तलाश है, वो जानते हैं कि जुल्म जुल्म होता है, इसका ताल्लुक सरहदों से नहीं होता, जहां भी होगा जुल्म होगा। एक सलावत इनायत फरमाइए, समझ में आ गई बात? ये मैसेज देना जरूरी होता है, जवाब देने जरूरी होते हैं। क्यों बता रहा हूं? है कुछ ऐसे कि वहां जाते तो वहां की गाते हैं, यहां आते तो यहां की गाते हैं, फिर कहते हैं मार्केटिंग का मसला है ना, बुलाया जाता है ना वहां। लानत हो ऐसे नजरियात के ऊपर कि जो सरहदों के साथ बदलते हो कि फलां जगह जाके यूं कहना है, फलां जगह जाके यूं कहना है, फलां जगह यूं तारीफ करनी है। खुदा के बंदो, हुसैनी बन के जीना सीखो, क्या होगा? पाबंदी लगेगी, लग जाए, वीजा नहीं मिलेगा, ना मिले, जमीर के साथ जिंदा रहना सीखो, जिंदा जमीर के साथ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बहुत हो गई बात, अब मैं जानता हूं इसका जवाब भी कहां कहां से आएगा, कैसे आएगा, लेकिन मैं सारे तीर खाने के लिए तैयार बैठता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया, बड़ा जिगर दिया है मुझे, जानता हूं कहां कहां से आएगा। ये मसला नहीं, कोई बात नहीं, जवानी गुजार दी, अब तो बुढ़ापे में आ गया, अब काय का डर है? वो उस वक्त डरना चाहिए था जब जवानी होती है, उस नहीं डरे भाई, अब क्या डरेंगे, अब तो वैसे पता नहीं कब चलते चलते निकल जाए, आगे पता ही कुछ नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुनिए, एक नाम हो बस, नजाशी ने क्या किया, हाथ में ऐसा था, जैसे ही जाफर तैयार का खिताब खत्म हो सकता था दरबार पे, नजाशी ने जमीन पे अपना आसा मारा और कहा खुदा की कसम ईसा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे जो जाफर कह रहा है। यह है हक की आवाज, यह हक का असर, समझ में आ गया? तो अल्लाह ने मुबल्लिग पहला जो भेजा, आलिम भी था, खतीब भी था, उसकी खिताबत में सहर भी था, लेकिन इल्म के साथ था। खाली खतीब होता तो पता नहीं क्या कर देता, लेकिन इल्म के साथ था। जब इल्म के साथ था तो अल्लाह के रसूल ने भेजा ना, भेजा नहीं भेजा? अच्छा, अब भी इसमें कोई शक करता है? तीसरी मिसाल दे देता हूँ और आज की मजलिस खत्म। हालांकि आज बहुत सारा मैटर मैं लाया था आप तक पहुँचाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ये घड़ी जो है, वक्त जो है ऐसे निकल जाता है, मालूम नहीं होता। खैर, जिंदगी रही कल से ही। तीसरा नाम, मदीने से बनी खजरत के 6 लोग आए, बेसत का 11वां साल है गालिबन, यानी वही साल है जिस साल जिसको आमुल हुज्न कहा जाता है, बैत उबैउला जिसको कहते हैं। کس کی سرداری میں؟ اسعد ابن زرارہ سردار بنی خزرج کے 6 افراد آئے اسلام قبول کیا، دعوت قبول کی، چلے گئے، اگلے سال 12 چلے گئے. اب اسعد ابن زرارہ سردار تھے قوم کے، مگر علم ختم ہو گیا. خط لکھا حضور کو، قاصد بھیجا کہ حضور اب مجھے جتنا آتا تھا میں نے بتا دیا، اب مجھے نہیں معلوم، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے، کسی عالم کو بھیجیے، کسی عالم کو بھیجیے، کسی ایسے کو بھیجیے کہ جو ہمیں بتا سکے. تو حضور خود گئے تشریف لے گئے؟ نہیں، معجزے سے گئے. حضور کہتے رہا میں میری تقلید کروں میں آ رہا ہوں بتا دوں گا، نہیں، اپنی حیات صاحب سامنے. کسی نے بھیجا؟ مولا کائنات کو بھیجا؟ نہیں، مولا کائنات کا تو مقام ہی اور ہے نا، علم لدنی کا حامل ہے میرا ماں. نہیں، جیسے حبشہ میں بھیجا تھا کسے؟ جعفر تیار کو. یہاں کسے بھیجا؟ جوان جوان حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، لیکن دوسروں کی نسبت زیادہ جلدی سیکھتا ہے. تو مصعب ابن عمیر کو بھیجا، جائیے آپ یثرب جائیں، مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیں، انہیں نماز سکھائیں، ان کی امامت کریں، انہیں دین سکھائیں. تو اتنا سکھا دیا تھا نا رسول نے کہ یثرب میں جا کے جب لوگ مسلمان ہو تو ان کو قرآن کی تعلیم دیں، نماز سکھائیں، دین سکھائیں، دینی باتیں بتائیں. اور پریشان مت ہوئیے گا، اگر کسی مسئلے میں گرفتار ہو خط لکھ دیجیے گا، یعنی تیار کر کے بھیجا اور یہی بتا دیا کہ پشت پہ میں ہوں. کوئی ایسا مسئلہ جس کا جواب نہ، کوئی بات نہیں، مجھے خط لکھیے گا، میں حل کروں گا. بس عزیزو، وہ سلسلہ جو رسول نے شروع کیا تھا آج تک جاری ہے نیابت کا. اگر رسول نے مصعب ابن عمیر کو نہ بھیجا ہوتا، جعفر تیار کو نہ بھیجا ہوتا، پھر نیابت کی ضرورت نہ تھی. لیکن رسول نے، ابھی اور بھی نام لوں گا، رسول نے بھیج کر بتا دیا کہ ہر زمانے میں انسان ہدایت کی طرف، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک ہدایت کی طرف محتاج ہے. ایک عالم ضرور ہونا چاہیے تمہارے درمیان. بس وہی سلسلہ آج تک جاری ہے کہ نہیں؟ کیا یہ نیابت؟ کل بتائیں گے نا صفات زندگی رہی تو، کیونکہ اب تو وقت نہیں رہا کہ کس کی تقلید کرنی ہے، کس کی حاصلی، دونوں باتیں بتائیں گے. کیونکہ یہ بھی ہے کہ تقلید نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، اور یہ بھی ہے کہ کرو، تقلید کرو، تقلید کرو، دونوں باتیں. آج کی بات ختم کر رہے ہیں. نائب امام، یہ غیبت کا زمانہ، فلی العوام ان یقلدوہ. ابھی ایک ہی جملہ جو کل کی تقریر کا ہے اسی سے انشاءاللہ شروع کریں گے، انشاءاللہ. بس عوام ان کے پیچھے چلیں، ان کی تقریر کریں. صفات پہلے بتا دی گئی، اس کے بعد ہی کہا گیا. یہ نائب کیا ہے؟ کیا اس کو نائب امام زمانہ کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ لوگوں نے اتنا آسان لے لیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چند کروڑ ڈالر خرچ کرنے سے یا چند ارب ڈالر چھاپ لینے سے، بانٹ دینے سے یہ نظام ختم ہو جائے گا، مرجعیت کا نظام ختم ہو جائے گا، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. عقل کے اندھو، تمہیں معلوم ہی نہیں یہ نائب امام کی اپنی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو رسول نے پہلا بھیجا تھا نا مصعب ابن عمیر، کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ ہم پیچھے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے ہم سے رجوع کریں نا، ہم بتا دیں گے. اور خدا کے بندہ، یہ نائب امام کیوں اتنے اعتماد اور اطمینان سے بات کرتا ہے، فتوی دیتا ہے؟ کیا کہا تھا اس نائب نے ابھی تھوڑی دن پہلے، جب لگ رہا تھا جنگ شروع، جنگ شروع، حملہ شروع، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی قوم کو خبر دی تھی، مطمئن رہے میری قوم، نہ اس میں حملہ کرنے کی جرات ہے، نہ ہم مذاکرات کریں گے. ایسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مجتہد، یہ نائب امام کہہ ہی نہیں سکتا جب تک پشت میں کوئی طاقت نہ ہو. ہم تمہارے پیچھے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتی دنیا تمہارا، ہم تمہارے پیچھے. سمجھ میں آ گئی نیابت؟ یہ تو ابھی تفصیل سے باتیں چلیں گی، ابھی جو ابتدائی دو مجلسیں ہوئی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. بس عزیزوں، کربلا میں ایک فقیر کا نام میں نے کر لیا، وہ نام تو ہمیشہ آتے رہتا ہے حبیب ابن مذاہب کا، یہ بتائیے اہل بیت میں امام کو ہٹا کے چوتھے امام اور پانچویں امام کے بعد کون ہے سب سے بڑا عالم؟ اب پانچ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ صرف مولا نے تلوار چلانی سکھائی، اپنا علم نہیں دیا عباس کو. خواتین میں، خواتین کیا، میں تو بطور کلی بات کہوں، ثانیہ زہرا سے بڑا کوئی عالم ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہے کوئی؟ کتنی بڑی عالمہ! اگر عالمہ نہ ہوتی ثانیہ زہرا تو حسین اپنے اس کار امامت میں شریک بناتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے سید سجاد بعض جگہوں پہ مشیت الہی کے تحت اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے انجام نہیں دے سکتے. یہ مشیت الہی، مجبور نہیں ہے امام، مشیت الہی. لیکن میری بہن زینب اتنی بڑی عالمہ ہے کہ چاہے بازار ہو، چاہے ابن زیاد کا دربار ہو، چاہے شام کا بازار ہو، چاہے یزید کا دربار، جب یہ گفتگو کرے گی سناٹا چھا جائے گا سب پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ علی کی بیٹی ہے، عالمہ بھی ہے، خطیبہ بھی ہے. خطابت ایسی ہے کہ جب گفتگو کرتی ہے تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ علی گفتگو کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. کتنے مقامات ایسے آئے ہیں ثانیہ زہرا پر، آپ ذرا تصور تو کریں کہ وہ خاتون کہ جس کے ہمسایوں نے کبھی اس کا لہجہ نہیں سنا، کبھی نہیں سنا، اچانک اس خاتون کو بازاروں میں آنا پڑ جائے، اور پہلا مرحلہ کتنا عجیب مرحلہ ہے، اندوہناک، المناک، جو بھی کہہ لیجیے آپ، کوفے کا مرحلہ کیسا مرحلہ ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں ثانیہ زہرا اپنے بابا کے ظاہری دور میں 4.5 سال شہزادیوں کی طرح رہی ہے. تصور تو کریں نا اس شہر میں کیسے رہی ہیں ثانیہ زہرا. گھر، مولا کا گھر مکتب ہے، کوفے کی خواتین آتی ہیں، بچے بچیاں آتی ہیں، اور ان سب کو درس و تدریس. پہلا مدرسہ جو قائم کیا ہے نا، وہ ثانیہ زہرا نے کوفے میں قائم کیا ہے. درس و تدریس، قرآن کی تعلیم، نماز کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، سب سے بڑی تعلیم ہے فقہ کی تعلیم، تاکہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے لوگوں کو. فقہ کی تعلیم دے رہی ہیں ثانیہ زہرا، فقہ کی تعلیم دے رہی ہیں بچے بچے. یہ وہ کوفہ ہے. تو سب خواتین جانتی ہیں کہ نہیں جانتی ہیں؟ جانتی ہیں ثانیہ زہرا. اب بتائیے کہ اس بازار میں ثانیہ زہرا آئیے کیا گزر رہی ہے. اب بالوں سے ہر بی بی منہ چھپائے کہ نہ چھپائے کہ کہیں کوئی بی بی پہچان نہ لے، کوفے کی کوئی عورت پہچان نہ لے. زینب کو بھی یہی احساس ہے، ام کلثوم کو بھی یہی احساس ہے کہ پہچان نہ لے. اس شہر میں ہم رہ کے گئے کیونکہ ٹھٹ ہے، مردوں عورتوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ گزر رہا ہے قافلہ اسیروں کا. زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، حسین حسین. تڑپ اٹھی زینب، کون ہے جو میرے ماں جائے کو آواز دے رہا ہے؟ ناقے کی بلندی سے دیکھا، ایک بی بی ناقے کے پاس سے گزری، پکار دی حسین حسین حسین. پوچھا ثانیہ زہرا، کس حسین کو بلا رہی ہے؟ اس بی بی نے حیرت سے دیکھا اس قیدی خاتون کو، اور کہتی ہے میرا بچہ، میرا بیٹا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، کھو گیا، اسے تلاش کر رہی. ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ثانیہ زہرا نے، ٹھنڈی آہ بھر کے، تیرے حسین سے میرے حسین کی مصیبت نہیں دیکھی گئی، جا تیرا حسین تجھے اپنے گھر میں ملے گا. یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا اس بی بی کی، حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی بی بی، کیسی خبر دے رہی مجھے قیدی خاتون، واپس چلی یہ سوچوں میں گھوم گئی، کیسی خاتون ہے تو مجھے خبر دے رہی میرے بچے کے بارے میں. جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ واقعی اس کا بچہ تکیے میں منہ دے کے دھاڑے مار مار کے رو رہا. ہچکیا بنی، تڑپ اٹھی، دوڑ کر سینے سے لگایا، سینے سے لگا لیا مجھے. میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، آخر ہوا کیا؟ ایسے روتا کیوں ہے؟ بچہ کہتا ہے کاش میں نہ گیا ہوتا، میری ماں میں نہ گیا ہوتا، کاش میں نے تماشا نہ دیکھا. کیوں میرے بچے، آخر ہوا کیا، مسئلہ کیا، بتا تجھے. کہ میری ماں تجھے کیا بتاؤں، یہ شہدا کے جو سر ہیں بھلا باغیوں کے سر ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے نورانی سر ہیں یہ، یہ باغیوں کے سر نہیں ہیں. اچھا ایک بات بتا، کیا 6 مہینے کا بچہ رو سکتا ہے؟ तलवार उठा सकता है? मेरी माँ 6 माह के बच्चे के सर को काट के भी नियाज़े में बुलंद किया था इन्हें। तड़प उठी माँ, कहती मेरे लाल तूने पूछा नहीं कौन है, कैसे तो और रो रहा हूं कि इस कारवा का कारवा सालार उसका नाम भी हुसैन है, जिसका सर सबसे बुलंद नेजे पे उसका नाम भी हुसैन है। बस ये सुनना था, वो बीबी तड़प के कहती है नाम ना ले, जानता है मेरे मैंने तेरा नाम अपने सैयद और सरदार अपने आका मौला हुसैन के नाम पे रखा है जो हुसैन मदीने का रहने वाला। बच्चा कहता है माँ लोग यही कह रहे थे मदीने वाला हुसैन कत्ल कर दिया। जज़ाकुम रब्ब। वो कहती है मेरे लाल ऐसे ना कह, ऐसे ना कह, तुझे नहीं पता हमारा हुसैन मदीने का बादशाह है, हमारा हुसैन रसूल का बेटा है, हमारा हुसैन दिलबंद जहरा है, हमारा हुसैन मौला अली का लाल है। ये सुनना था बच्चे ने फिर मुंह अपना पीटना शुरू किया, मुंह पीट पीट कर कहता है माँ तू लुट गई, तू बर्बाद हो गई, अरे वही हुसैन कत्ल कर दिया गया जो रसूल का बेटा है, जो जहरा का लाल है, जो अली के जिगर का टुकड़ा है, वही हुसैन तो कत्ल किया गया। फिर चादर सर पे डाली, दौड़ी बाहर, अब जो अहवाल कुर्सी की तो मालूम हो गया, हाँ ये जो सर है लहू में डूबा हुआ इसके मौला हुसैन का सर है। फिर मालूम हुआ कि जो बीबियां हैं नाकों पर यही रसूल जादियां हैं, इन्हीं में ज़ैनब है, इन्हीं में कुसुम है, इन्हीं में रुकैया, इन्हीं में सकीना। बस अब एक एक नाके के पास आकर पुकारती थी, चिल्लाती थी, तुम में कोई ज़ैनब है, तुम में कोई उम्मे कुसुम है, कोई बीबी पहचाने जाने के डर से अपना नाम नहीं बताती थी। एक नाके के पास आकर कहती है तुम्हें हुसैन की कसम देती हूँ, बताओ बताओ तुम्हें ज़ैनब कौन है। पर जैसे ही भाई की कसम सुनी, ज़ैनब ने तड़प कर कहा भाई की कसम ना दे उम्मे हबीबा, हमने कहा था ना हम तेरे मेहमान बनेंगे, तू पहचान भी ना सकेगी। उम्मे हबीबा ने मुंह पीट पीट कर कहा ऐ शहजादी ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? शहजादी फरमाती है छोड़ इन बातों को, बस एक एहसान कर दे, कुछ चादरें लेकर आ जा, फेंक दे हमारे सरों पे। दौड़ी दौड़ी चीखती चिल्लाती घर गई, कुछ चादरें लेकर आई, नाकों पर बीवियों के सरों पे फेंक रही थी कि उससे पहले सिपाही आ गए, इससे पहले के चादरें बीवियों के सरों तक पहुंचती, इन मलूनों ने दरमियान से नेज़ों पे चादरें। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन। فسيعلم الذين ظلموا ويا منقلب ينقلبون. بس آپ سے مختصر سی دعا کروں گا، باری الہ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. ایک التجا ہے آپ سے، میری والدہ سخت تلیل ہیں اور ہمارے ایک دوست پاک حیدری اسکاؤٹ کے حسن مہدی صاحب صبح ان کا دل کا آپریشن ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا، آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے سب کو شامل کر کے دعا کریں بحق بیمار کربلا، پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ. میں آپ سے درخواست کروں گا شہید ڈاکٹر سید علی صفدر اور تمام شہدائے ملت کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھیں.